कहीं न कहीं अरमान की निगाहें उस वक्त आस्था के पूरे शरीर को चेक कर रही थीं कि कहीं आस्था के शरीर पर कोई खरोच या किसी चीज का निशान तो नहीं है। आस्था बड़े ही ध्यान से अरमान को देख रही थी। अरमान की नजरें उसे अपने पूरे जिस्म पर महसूस हो रही थीं। आस्था अरमान को बताना चाहती थी कि वो बिल्कुल ठीक है, वो परेशान ना हो, लेकिन अरमान की इंटेंस नज़र देखकर आस्था घबरा रही थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि अरमान उसे लेकर कितना ज्यादा पजेसिव है। तभी आस्था आहान की ओर देखकर बोली, देवर जी, हम आपको यही तो बताना चाहते हैं कि हमने नानी माँ को कुछ लोगों को गाड़ी में डालकर कहीं ले जाते हुए देखा। रश्मि दीदी ने हमें जो ड्रेस ट्राई करने के लिए दिया था, हम अरमान जी को दिखाने के लिए जा रहे थे, लेकिन जब हमने इस तरह से कुछ लोगों को एक बड़ी सी काले रंग की पॉली बैग में नानी माँ को ले जाते हुए देखा, तो हम पूरी तरह से चौंक गए और हम तुरंत नानी माँ को आवाज देते हुए उनके पीछे जाने लगे। अविनाश भैया ने हमें देख लिया, वो भी हमारे साथ पीछे पीछे आ गए, लेकिन जब तक हम दोनों कुछ कर पाते, वो लोग एक बड़ी सी गाड़ी में बिठाकर नानी माँ को निकल गए थे। अरमान ने एक नज़र सुमित की ओर देखी। अरमान की नज़र भांप कर सुमित सवाल पूछते हुए बोला, अच्छा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वो नानी माँ ही है? अब आस्था एक पल के लिए थोड़ा सा हड़बड़ा गई थी और अगले ही पल बोली, वो अरमान जी, उसे पॉली बैग में से नानी माँ का हाथ दिखाई दे रहा था और नानी माँ के हाथ पर ये ओम का निशान हम बचपन से ही देखते आए हैं, तो हम भला इस निशान को कैसे नहीं पहचानते? अब जैसे ही आस्था ने ये बोला, अरमान को कुछ तसल्ली हुई। तब अविनाश ने आगे कहना शुरू कर दिया, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि हमें किसी को कुछ बताने का मौका नहीं मिला था, और लकीली जब हम नानी माँ की उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे, वो गाड़ी हमारी नज़रों से गायब हो गई। उसके बाद हम कितने ही देर तक नानी माँ को ढूंढते रहे, और फिर हमें लकीली नानी माँ सड़क पर दिखाई दी। उसके बाद नानी माँ ने कहना शुरू कर दिया, हाँ हाँ, आस्था बिटिया और अविनाश बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे पता नहीं, कोई 4 से 5 बदमाश थे, वो लोग कह रहे थे कि बहुत बड़ा माल उनके हाथ लगा है और वो उसके साथ आज बलात्कार करेंगे। नानी माँ ने सीधे सीधे सपाट शब्दों में जैसे ये बोला, अरमान और बाकी सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। वहीं अरमान ने अब सारी चीजों पर गौर करना शुरू कर दिया था कि आस्था चेंजिंग रूम में जा रही थी, नानी माँ आस्था के बाद चेंज करने गई थी। इसका मतलब साफ था कि ये किडनैपिंग नानी माँ के लिए नहीं बल्कि आस्था के लिए की गई थी। ये बात जल्दी ही सबको समझ में आ गई थी और सब चौंककर आस्था की ओर देखने लगे। वहीं आस्था अब थोड़ा सा घबरा गई थी, क्योंकि अगर किडनैपिंग उसके लिए थी तो उसने किसी को क्या बिगाड़ा था, और उसका सिर्फ और सिर्फ इस शहर में एक ही दुश्मन है और वो है राजवीर जिंदल। और राजवीर जिंदल को तो पता भी नहीं कि आस्था कैसी दिखती है, कहाँ रहती है, तो फिर इस तरह से भला आस्था को किडनैप करने की कोशिश कर सकता है? वहीं आकाश गंभीरता से बोला, मुझे लगता है शायद नानी माँ ठीक कह रही हैं, जरूर सोची समझी किडनैपिंग थी, क्योंकि मॉल के CCTV कैमरे आज ऐन वक्त पर बंद होना ही इस बात की निशानी है। तभी अरमान ने एक नज़र दादाजी की ओर देखी और नाखुश होकर बोला, अगर दादाजी सिक्योरिटी लाने से मना नहीं करते तो शायद आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। वहीं अरमान की बात सुनकर दादाजी ने अपना सर झुका लिया था। तभी ध्रुव दादाजी की साइड से बोला, लेकिन भैया इसमें दादाजी की क्या गलती है? हम लोगों को तो यही मानना था ना कि हम अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। गलती हम सबकी है, हमें केयरफुल रहकर शॉपिंग करनी चाहिए थी। अब इस तरह से सारी बातें होते हुए देखकर नानी माँ को लगा कि कहीं ये सब लोग झगड़ने न लग जाए। नानी माँ तुरंत रोब जमाते हुए बोली, अरे आप लोग परेशान क्यों होते हो? उन बदमाशों को हमने अच्छा खासा सबक सिखा दिया है। अरे झाड़ू से हमने उनकी इतनी पिटाई की है, इतनी पिटाई की है कि वो आगे से किसी लड़कियों को नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे। हम ऐसे थोड़ी ना उन्हें जाने देते। अब जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, वहाँ का माहौल कुछ ही पल में हल्का फुल्का सा हो गया था और सभी मुस्कुराने लगे, और कहीं ना कहीं आहान को नानी माँ पर फख्र हो रहा था। वहीं दूसरी ओर अब राघव के गुस्से के मारे बुरा हाल हो चुका था। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसकी जरा सी लापरवाही से उसे इतना बड़ा नुकसान होगा। उसे तो लगा था कि उसने आस्था को किडनैप किया है, लेकिन सच ये है कि उस वक्त वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। एक तो अरमान सिंघानिया के वहां रहते हुए उसी की बीवी की किडनैपिंग करना कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन राघव ने फिर भी अपनी खुन्नस में और प्रियंका के सामने शेर बनने के लिए इतना रिस्क लिया था। CCTV कैमरा भले ही उसने बंद कर दिए थे, लेकिन उस वक्त इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि उसकी नजरें चारों तरफ थीं सिवाय नानी माँ के। इसलिए आस्था और नानी माँ दोनों में ही उस वक्त फर्क नहीं कर पाया था और सीधा बेहोश करने के बाद फटाफट से पॉली बैग में उसने पैक कर लिया था। अब राघव अपना सर लटकाए हुए बैठा हुआ था। उसके दोस्त राघव को खरी खोटी सुनाने के बाद वहां से चले गए थे। वहीं प्रियंका को राघव ने एक जगह मिलने के लिए बुलाया था और वहां जाकर उसने सारा सच बता दिया था, किस तरह से तुम्हारी दादी अगवा हो गई थी और दादी ने हमें इतना मारा, बहुत ज्यादा, क्योंकि राघव के हाथ पैर कमर पर झाड़ू के छपने के निशान मौजूद थे। और प्रियंका आग बबूला हो उठी थी और राघव की ओर देखकर बोली, तुमसे कोई काम ढंग का नहीं हो सकता है राघव, क्या जरूरत थी यहाँ वहाँ देखने की? क्या तुम एक नजर उठाकर सामने नहीं देख सकते थे कि वो नानी माँ है या फिर ये आस्था है? अरे क्या तुम एक बूढ़ी औरत और साथ ही साथ एक जवान लड़की में फर्क नहीं पाए? हाँ, ये बोलकर प्रियंका राघव को काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाने लगी। तभी राघव प्रियंका पर चिल्लाता हुआ अकड़ते हुए बोला, अच्छा, अरमान सिंघानिया के रहते वहां से उसकी बीवी को अगवा करना क्या तो कोई मामूली है? मेरी बात समझ रही हो? हाँ, एक तो मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिस्क लिया, ऊपर से तुम मुझे ही बातें सुना रही हो। ये बोलकर राघव गुस्से से अब प्रियंका को घूरने लगा था। वहीं प्रियंका तुरंत बात बदलते हुए बोली, नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, तुम मुझसे नाराज मत हो। मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहती थी कि हमें बहुत अच्छा मौका मिला था, लेकिन हमने वो मौका गवा दिया है। क्योंकि प्रियंका राघव को नाराज होने का रिस्क नहीं ले सकती थी, क्योंकि अगर राघव नाराज हो जाता है तो ये प्रियंका के लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं रहता, क्योंकि प्रियंका की जिंदगी में और राघव के अलावा और कोई नहीं था। राघव ने प्रियंका की ओर देखकर मदहोशी भरी आवाज में कहा, देखो, मेरा इरादा तो तुम्हारी बहन को अच्छा खासा सबक सिखाने का था, लेकिन फिलहाल मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, और इससे पहले कि मेरा मूड ठीक नहीं होता, मेरा दिमाग नहीं चलेगा, तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये बोलकर जल्दी ही राघव ने प्रियंका का टॉप उतार दिया था और अपने होठों से उसे मदहोश करने लगा था। वहीं दूसरी ओर ऑलमोस्ट अब सबकी शॉपिंग हो गई थी। ऑलरेडी आस्था जो भी सामान उसे खरीदना था वो खरीदी चुकी थी और सबके सब एक बार फिर घर आ गए थे। अब सबके चेहरे मायूस थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग करें तो करें क्या, वो पहले किडनैपर को ढूंढे या फिर गांव का सफर कंटिन्यू करें। क्योंकि एकदम से इतना बड़ा हादसा हो गया था तो कोई कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था और सब लोग गाँव भी जाना चाहते थे कि इससे सबका मूड ठीक हो जाएगा।
वहीं आहान ने भी सोचा था कि सभी मामलों से अलग अगर वो गांव में रहेगा तो आसानी से रौनक को पटा लेगा या उससे शादी के लिए अग्री करवा देगा, तो कहीं ना कहीं सभी के दिमाग में इस वक्त अलग अलग तरह के प्लान चल रहे थे। वहीं इस वक्त आस्था अविनाश दोनों ही एक दूसरे से बातें करना चाहते थे, क्योंकि दोनों की ही आंखों के सामने से वो सीन नहीं जा रहा था जब राजवीर चिंदल अपनी मरी हुई बीवी को कपड़े पहना रहा था और उस पर प्यार लुटा रहा था। दोनों काफी हद तक अंदर ही अंदर सहम से गए थे कि ये कितना खतरनाक आदमी हो सकता है। ये इंसान जो एक लाश के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहा है, इस इंसान का तो कोई भरोसा ही नहीं है। तब अरमान ने एक नज़र सबकी ओर देखा और बिना एक्सप्रेशंस के साथ बोला, आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो किडनैपर कौन थे उसका पता बहुत जल्द चल जाएगा। अभी फ़िलहाल सबके सब गांव जाने की तैयारी करोगे, क्योंकि मैंने मारिया और टाइगर और देव को वापस बुला लिया है, वो यहां आकर सारा काम संभाल लेंगे। अब अरमान की बात सुनकर सबके चेहरे खिले उठे थे, क्योंकि कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि ऐसी सिचुएशन में जब नानी माँ किडनैप होते होते बची थी तो क्या इस तरह से वो लोग गाँव में जाने के लिए बोले ना बोले, लेकिन अरमान के कहने पर अब सभी खुश हो गए थे। वहीं दादाजी अब थोड़ा सा मायूस थे, क्योंकि अरमान ने दादाजी से काफ़ी रूडली बात की थी। अरमान को लग रहा था कि अगर दादाजी सिक्योरिटी साथ में लाने को मना नहीं करते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता, इसीलिए वो दादाजी को इसका सीधे सीधे जिम्मेदार ठहरा रहा था। वो एक तरफ बैठे हुए थे तब आस्था ने दादाजी की ओर देखा था, उनके पास जाकर चंचलता से बोली, क्या बात है दादाजी, आप इतना ज़्यादा उदास क्यों है? आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम बिल्कुल ठीक हैं, और आपने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया, और वैसे भी बिना सिक्योरिटी के भी हमें बाहर जाना चाहिए, कम से कम इसी बहाने ये तो पता चलेगा कि हमारे हस्बैंड में, हमारे पतिदेव में कितनी ताकत है कितनी ताकत नहीं है, ये हमेशा वो सिक्योरिटी के भरोसे ही हमें प्रोटेक्ट करेंगे। अब जैसे ही आस्था ने ये बोला, अरमान ने अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए आस्था की ओर देखता है और मन ही मन में सोच रहा था कि मेरी आफत अपने पति की ताकत आजमाना चाहती है। ये सोचते हुए अरमान तिरछा सा मुस्कुराया। अरमान भी दादाजी के पास गया था और अदब के साथ बोला, दादाजी आप ही चले तैयार हो जाइए, और उस वक्त मैं आपसे बदतमीजी कर बैठा उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जैसे ही अरमान ने ये बोला, सबकी आंखें बाहर निकलने को तैयार थीं। अरमान सिंघानिया और माफ़ी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आस्था प्यार में पड़ने के बाद अरमान सिंघानिया माफ़ी भी मांगने लगा था। अरमान के मुंह से माफ़ी सुनते ही दादाजी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और आगे बढ़कर उन्होंने अरमान को गले से लगा लिया था, और अरमान ने भी बदले में दादाजी को गले से लगा लिया। एक पल के लिए सभी की आंखें नम हो गई थीं। अरमान बहुत कम अपने इमोशंस दिखाया करता था। वहीं अरमान ने दादाजी को गले से लगाकर के कान में फुसफुसाते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, आप आस्था जैसी लड़की को मेरी जिंदगी में लेकर आए, वरना शायद प्यार क्या होता है, इमोशंस क्या होता है, मैं कभी समझ ही नहीं पाता।